بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آج ہم آپ کے لیے کتاب برمودا تکون اور دجال ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. اس کے مصنف مولانا عاصم عمر ہیں. یہ آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03-21-21-38-225. تقریض: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. اس فتنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے. اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتے ہوئے اس پر فتنہ دور میں مولانا عاصم عمر کی یہ کتاب برمودا تکون اور دجال، دجال اور اس کے فتنوں سے آگاہی اور اس سے بچنے کے لیے بہتر کوشش ہوگی. اس کے مطالعے سے غفلت کی زندگی گزارنے والے مسلم معاشرے کو بیداری حاصل ہوگی. اللہ تعالی موصوف کی اس محنت کو قبول فرمائے اور امت کو اہل اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر دجال اور اس کے فتنوں سے بچنے اور ذکر اور تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت الشیخ علی احمد نقشبندی مجددی. مصنف کی چند باتیں کتاب سماعت فرمانے سے پہلے سماعت فرمائیے. برمودا تکون کے بارے میں لکھنے کا مقصد آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنا ہے جو آپ نے اپنے صحابہ کو فتنوں کے بارے میں دی. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور تمام فتنوں سے بار بار آگاہ فرماتے تھے. نہ صرف آگاہ فرماتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بستی میں جب ایک یہودی کے ہاں ایسے لڑکے کے پتہ چلا جس میں دجال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ خود وہاں تشریف لے گئے اور چھپ کر اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے رہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ یمن میں ٹڈیاں ختم ہو گئی ہیں، تو آپ پریشان ہو گئے اور اس کی تحقیق کرائی. کیونکہ ٹڈیوں کا ختم ہو جانا علامات قیامت میں سے ہے. برمودا تکون شیطانی سمندر اور اڑن تشتریوں کے بارے میں انگریزی زبان میں بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے، لیکن یہ تمام تحریریں یا تو محض واقعات بیان کرتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ سائنٹیفک انداز میں موضوع پر بحث کرتی ہیں. مسلم محققین میں محمد عیسیٰ داؤد مصری نے برمودا اور اڑن تشتریوں پر گہری تحقیق کی ہے اور اس مسئلے کو احادیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. جہاں تک راقم کا اس موضوع پر لکھنے کا تعلق ہے، راقم کی مثال ایک دکاندار کی سی ہے جو اپنا سودا بیچنے کے لیے گاہک کو طرح طرح سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنا یہ سودا درد امت ہے. اس درد کو اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو دینے کے لیے اپنی کج فہم میں جو طریقہ آتا ہے उसको इख्तियार कर लेता है, वरना क्या बरमूदा तिकोन वाला और क्या उड़नतश्तरियों वाला। एक नन्ही सी जान अल्लाह ने दी है, उसी की अमानत है, जब चाहे ले ले। हर एक को अपना जवाब अपने मालिक के सामने देना है। ये दर्द उस वक्त और बढ़ जाता है जब पढ़े लिखे समझदार लोगों को देखता हूँ कि फौज दर फौज फिक्री गुमराही की तरफ दौड़े चले जाते हैं, ना हालात को कुरान की नज़र से देखते हैं, ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस की रोशनी में मौजूद वक्त को समझने की कोशिश करते हैं। इनके तज्जिये, तबसरे और मुस्तकबिल की पेशन गोइयां सुनकर कभी हंसी आती है और कभी रोना। इस तरह वो हक व बातिल के मामलात में अपनी जबान व अमल से दज्जाल के लश्कर के मुआविन बन रहे हैं और इमाम मेहदी के मुजाहिदीन की दिल आजारी का सबब बन रहे हैं। ये किताब दो अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब के तीन हिस्से हैं, शैतानी समंदर, बरमूदा तिकोन, उड़न तश्तरियाँ। दूसरे बाब में फितनों से मुताल्लिक अहादीस हैं। इस किताब में इन अहादीस को बयान नहीं किया गया है जिनको राकिम ने अपनी किताब तीसरी जंगे अजीम और दज्जाल में बयान किया है। चुनाचा इमाम मेहंदी और दज्जाल के बारे में अगर मजीद तफसील दरकार हो तो राकिम की मज़कूरा किताब में देखी जा सकती है। जहाँ तक इस बहस का ताल्लुक है कि दज्जाल बरमूदा तिकोन में है या शैतानी समंदर में, उड़न तश्तरी का मालिक वही है या कोई और। इस तरह की तमाम बहसों में राकिम का नुक्ता नज़र ये है कि मुहक्किकीन की मुख्तलिफ आरा को महज नकल कर दिया जाए। चूंकि दज्जाल के बारे में कतई इल्म अल्लाह ताला को है, लिहाजा बंदे को इनमें से किसी भी राय पर इसरार नहीं करना चाहिए। अलबत्ता किसी राय की ताईद अगर किसी हदीस से होती है तो इस हदीस को बयान कर दिया है। यही मामला उड़न तश्तरियों के हवाले से है। चुनाचा किताब में बयान किए गए मुहक्किकीन के नज़रियात और ख्यालात के मुकाबले में किसी भाई के पास कुरान और हदीस से दलाइल मौजूद हों तो वो काबिले तरजीह हैं। बंदे का असल मकसद लोगों को इस खतरे की नौइयत का एहसास दिलाना है जो उनके घरों की दहलीज तक पहुंच चुका है और दरवाज़ा झिझोड़ कर पूछ रहा है कि इस हक व बातिल की जंग में तुम किसके साथ हो। दज्जाल उड़न तश्तरी पर आए या हकीकी गधे पर, वो शैतानी समंदर में हो या अस्फहान में, दक्षिणी उससे मिला हो या कोई और, इस पर हमें कोई इसरार नहीं। लेकिन वो सब बरहक है जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल और उसकी कुव्वत के बारे में बयान फरमाया। और इससे बचना, इससे बगावत करना, उसके मुंह पे थूकना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो इसी फर्ज की याद दहानी के लिए जो कुछ बन सका वो आपकी खिदमत में पेश है। कुछ दोस्तों ने राकिम की किताब तीसरी जंगे अजीम और दज्जाल के बारे में ये ख्याल जाहिर किया था कि किताब में डराया बहुत गया है। पहली बात तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया ही है ताकि उम्मत इस फितने से गाफिल ना हो जाए। दज्जाल का बयान सुनकर सहाबा इतना डरे थे कि आंसुओं से रोने लगते थे। चुनाचा ये बयान ही ऐसा है कि इसको पढ़कर डरना ही चाहिए। ये इस बात की अलामत है कि आपको अपने ईमान की फिक्र है। दूसरी बात यह है कि राकिम का मकसद सिर्फ डराना नहीं बल्कि खबरदार करना है ताकि इस फितने से बचने की तैयारी की जाए। डरना इस माना में नहीं है कि मायूस हो जाएं। इस मायूसी से निकालने के लिए राकिम जिहाद और मुजाहिदीन की कामयाबियों के ताज़ा हालात भी लिखता है ताकि मुसलमानों को दज्जाली क़ुव्वत के साथ साथ ये भी पता चलता रहे कि इतना कुछ होते हुए भी मैदान में सूरत हाल क्या है और कामयाबियां किसके कदम चूम रही हैं। चुनाचा दज्जाल के फितने और उसके इत्तेहादियों की क़ुव्वत के बारे में जानिए और जहाद के मैदान से आने वाली खबरें मुजाहिदीन की जबानी ना के मीडिया की भी सुनिए और अपने सच्चे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि वो किस कसम पुरसी के आलम में इमाम मेहदी के लश्कर को मजबूत कर रहा है। ये याद रखिए कि अगर फितनों से बचने के लिए फौरी एहतियाती तदाबीर नहीं की गई तो ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इमाम मेहदी और दज्जाल के बारे में अहादीस का मुताला करके आपको ये एहसास हो जाएगा कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये बहुत अहम वक्त है। चुनाचा अहम वक्त में अहम फैसले करके ही हम खुद को अपने घर बार मसाजिदों मदारिस और अपने इलाकों को बचा सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद जितने ज्यादा अफराद तक ये पैगाम पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाइए। लोगों को अहादीस की रोशनी में हालात को समझने की दावत दीजिए। घरों में खवातीन अपने बच्चों को दज्जाल और उसके फितनों के बारे में बताएं। किताब की तैयारी में जिन कुतुब से इस्तफादा किया है उनके हवाले आखिर में दिए गए हैं। महज दोस्तों और बुजुर्गों के दुआओं के सहारे ही ये किताब आपके सामने है। दुनिया के हंगामों में ज्यादा वक्त नहीं मिल सका, सो किताब में जो गलती नजर आए वो राकिब की कम इल्मी ही समझिएगा। बहुत से दोस्तों ने किताब की तैयारी में तावुन किया है, बल्कि बाज ने तो जबरदस्ती ही ये किताब लिखवाई है। अल्लाह ताला उनके दिलों में अपनी मुलाकात का शौक पैदा फरमा दें। अपनी खसूसी दुआओं में दज्जाली क़ुव्वतों के खिलाफ लड़ने वालों को जरूर याद रखा कीजिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के लिए बददुआएं कीजिए कि अल्लाह उनकी साजिशों को ही उनकी तबाही का सामान बना दें। इस गुनहगार को भी अपनी दुआओं का हिस्सा बना लीजिए। अपनी बेहंगम जिंदगी की ये कश्ती हालात की मौजों पर हिचकोले खा रही है। दुआ कीजिए कोई मौज आकर इस डोलती कश्ती को भी मंजिल पर पहुंचा दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसकी कोशिश को महज अपनी रजा के लिए कबूल फरमा लें और उम्मते मुस्लिमा के लिए इसको नफे का जरिया बनाएं। आमीन। मुकद्दमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल मुर्सलीन वअला आलिही वअस्हाबिही अजमाईन। हक़ो बातिल की सफ़ें बहुत तेज़ी के साथ अलग अलग होती चली जा रही हैं। बहुत सी शख्सियात और जमातें अलल ऐलान बातिल के लश्कर के साथ अपना मुस्तकबिल वाबस्ता कर बैठी हैं। पुराने इत्तेहाद भी मजीद मजबूत हुए हैं। कल तक जो ज़बानें खामोश थीं अब उनके लब भी किसी ना किसी के हक या मुखालफत में हिलना शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बराह रास्त तो नहीं, अलबत्ता बिलवास्ता उनकी ज़बान कलम और कोशिशें दज्जाल के लश्कर को मजबूत करने में सर्फ हो रही हैं। अगरचा उनका नफ्स इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि वो दज्जाल को मजबूत कर रहे हैं, जो लोग खुलकर दज्जाली क़ुव्वतों के सामने झुक जाने की उम्मते मुस्लिमा को तलकीन कर रहे हैं वो ढके छुपे नहीं हैं। उनका निफाक बल्कि कुफ्र उनकी लंबी जबानों से इस तरह टपक रहा है जैसे पीप भरे जख्म से पीप टपक रही होती है। इस्लामी निज़ाम के मुकाबले कुफ्रिया निज़ाम की मोहब्बत कलमा गो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं और यहूदियों से हमदर्दी, भारत के बरहमन और अमेरिका के यहूद के दर्द में घुले जाना और इस्लाम पर जाने लुटाने वालों के खिलाफ जहर आलूद तीरों नश्तर उनकी कमीन गाहों से बरछाए जा रहे हैं। यह तबका अपने आप को दज्जाल की सफों में खड़ा कर चुका है। मुसलमान जैसे नाम सिर्फ इसलिए रखे हैं कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हैं। अगरचा इसके लिए भी इनकी दिली ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान के वजूद को खत्म करके इस खत्ते को भी बरहमन की गुलामी में दे दें। इनके अलावा जो लोग अभी तक जमहूरी निज़ाम या हुकूमतों के आने जाने के चक्कर में फंसे हैं, उन्हें भी अब रुक कर सोचना चाहिए कि इस निज़ाम के धागे कौन हिला रहा है, किसके इशारे पर हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं, किसके कहने पर तमाम दुनिया का मीडिया, ख्वाह आलमी हो या मुल्की, इलेक्शन से पहले इसी जमात और फर्द की हिमायत शुरू कर देता है जिसको खुफिया कुव्वत जताना चाहती है। हम भी कितने भोले हैं, एक जानिब दुनिया को आलमी गांव ग्लोबल विलेज तस्लीम करते हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान या दीगर मुस्लिम ममालिक के बारे में ये समझते हैं कि इलेक्शन में जीतने वाला अवामी मैंडेट लेकर आया है। ये अवामी मैंडेट नहीं होता, ये सब दज्जाल की दज्जाली मीडिया का फरेब होता है। हम इस बात को समझना चाहिए कि इस आलमी गांव में पाकिस्तान दज्जाल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को कब्जे में रखने के लिए उसके तमाम इदारे, खुसूसन IMF, वर्ल्ड बैंक और फ्रीमेसन की तमाम तर तवज्जा इस बात पर लगी हुई है कि पाकिस्तान इस इत्तेहाद में मौजूद रहे, ताकि इस खित्ते में मौजूद दज्जाल मुखालिफ लश्कर से लड़ने में आसानी हो। और इमाम मेहंदी की हिमायत के लिए जाने वाले लश्कर को यहीं खत्म किया जा सके। दज्जाल के नज़दीक पाकिस्तान की अहमियत की दूसरी वजह यह है कि सूबा सरहद कबाइल दज्जाल के बड़े इत्तेहादी भारत को लश्कर दे शिकस्त देकर इसको फतह करेंगे। चुनाचा अफगानिस्तान सरहदों कबाइल में किसी भी ऐसे लश्कर का मजबूत होना दज्जाली क़वतों की मौत का सामान है। यही वजह है कि पाकिस्तान में मौजूद दज्जाल के पैरोकारों की कोशिश है कि पाकिस्तानी फौज पर हर कीमत पर कबाइल को मिटाने की नाकाम कोशिश में लगी रहे। जहाँ तक मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान तबके का ताल्लुक है, दज्जाल इनसे मुतमईन होगा क्योंकि हुकूमती सतह से सब इसके मंसूबे के मुताबिक चल रहा है। जिस मुल्क में भी कोई इस्लामी तहरीक उठ रही है, उसको दबाने के लिए हुक्मरान तबका उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर रहा है। इन ममालिक की दाखिला पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, मुआशी और इकतसादी पॉलिसियाँ सब इसकी मर्जी के मुताबिक चल रही हैं। किसी भी मसले में उसको मजाहमत का सामना नहीं है, खुसूसन पीने के पानी के हवाले से। ये तमाम ममालिक दज्जाल की इसी पॉलिसी पर अमल पैरा हैं जो मुसलमानों को पानी के एक एक कतरे का मोहताज बनाना चाहते हैं। इसके लिए इसने मुख्तलिफ काफिर मुल्कों से डैम बनवा कर मुस्लिम ममालिक के दरियाओं को अभी से खुश्क कराना शुरू कर दिया है। ऐसा उसने सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं किया, बल्कि शाम, इराक, लबनान, उर्दुन, फलस्तीन और मिस्र के दरियाओं को खुश्क करने के मंसूबे मुकम्मल करा चुका है। इन मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों ने अपने अवाम को दज्जाल के रहमो करम पर छोड़ दिया है। IMF के होते हुए इस बात के आसार कम नजर आते हैं कि आइंदा भी कोई मजाहमत हुक्मरान तबके की जानिब से सामने आए। अलबत्ता दज्जाल के मंसूबों में मुस्लिम ममालिक के अवाम मजाहिम हैं, खुसूसन अफगानिस्तान के अंदर तालिबान, इराक में मुजाहिदीन और पाकिस्तान के कबाइल अल्लाह की मदद से दज्जाली मंसूबों को खाक में मिला रहे हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों, और पाकिस्तान से मोहब्बत के दावेदारों को एहसास नहीं है कि अल्लाह ताला ने सरहद व कबाइल में इस्लामी क़ुव्वतों को यूं ही मजबूत नहीं फरमा दिया, बल्कि उनको बैक वक्त कई दज्जाली मंसूबों को रोकने के लिए खड़ा किया है। ये मगरिब में अफगानिस्तान में मौजूद दज्जाली लश्कर की तबाही का सामान है। मशरिक में दज्जाल के बड़े इत्तेहादी भारत की उभरती उम्मीदों को नामुराद करके न सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले हैं, बल्कि इस खतरे से हमेशा के लिए पाकिस्तान को निजात दिलाने वाले हैं। एक बहुत बड़ी दज्जाली साजिश पाकिस्तान के शुमाल में पनप रही है, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं। ये साजिश दज्जाल के इस्फहानी यहूदी आगा खान ने आलमी इदारों के साथ मिलकर तैयार की है। ये साजिश आगा खान स्टेट बनाने की है, जिसकी सरहदें पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात से शुरू होकर अफगानिस्तान के सूबे कुंडा और नूरिस्तान को लेती हुई ताजिकिस्तान तक जाती हैं। कुंड और नूरिस्तान में अमेरिका ने खुद अपनी फौज रखी हुई है और साल 2007 और 2008 इन इलाकों में अमरीकियों के लिए बड़ा तबाहकुन गुजरा है। यही वजह है कि बाजौड़ ऑपरेशन के लिए साबिक सदर ने पाकिस्तान को खसूसी अहकाम दिए, जिनका नाम बुश है, और बाजौड़ को पॉलिटिकल इंतजामिया के मुखालफत के बावजूद यह ऑपरेशन किया गया। अफगानिस्तान सरहद व कबाइल की अहमियत दज्जाल अच्छी तरह समझता है, चुनाचा जब आप इसके इत्तेहादियों की जबानों से सरहद व कबाइल के बारे में ये बातें सुनते हैं कि यहाँ मौजूद इस्लामी क़ुव्वतें खत्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन क़ुव्वतों के होते हुए दज्जाली ख्वाबों को ताबीर नहीं मिल सकती। इन इस्लामी क़ुव्वतों को शिकस्त दिए बगैर ना इमाम मेहदी के लश्कर को रोका जा सकता है, ना आगा खान स्टेट कायम हो सकती है, और ना ही भारत को शिकस्त से बचाया जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के दुश्मन सूबाई सरहद और कबाइल के बारे में मुस्तकिल अपनी बदबूदार जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके एवज वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल भारत और अमेरिका में महफूज बनाना चाहते हैं। कभी वो इन इलाकों को पाकिस्तान के लिए खतरा करार देते हैं और कभी इन इलाकों पर अमरीकी परचम लहराता हुआ दिखाते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि सूबाई सरहद और कबाइल को अल्लाह ने ही पैदा किया है, बरसगीर के मुसलमानों की दादरसी और हिफाजत के लिए ही पैदा किया है। इस पर तारीख शाहिद है, और अब मुस्तकबिल करीब में अल्लाह ताला बरसगीर के मुसलमानों के लिए कौम अफगान से जो काम लेने वाले हैं, उसकी भिनक से ही इन मुनाफिकीन के दिल फट जाएंगे। आने वाले तूफान की पेशनगोई तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस, अहादीस की रोशनी में इससे बचने की तदाबीर तलाश करने वाले बहुत कम हैं। एक खतरनाक तूफान पाकिस्तान को हर तरफ से घेरे हुए है। जिस तरह तूफान नूह से बचने का वाहिद जरिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, इसी तरह सूबह सरहद व कबाइल बरसगीर के मुसलमानों की कश्ती है। सरहद व कबाइल ऐसी हकीकत है जो यहूद व हनूद दोनों ही जानते हैं, और उनकी किताबों में ये बातें आज भी मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद मुनाफिकीन, जिन्होंने हमेशा मुसलमानों के मुकाबले भारत के हिंदुओं को तरजीह दी, वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे। वो कल तक रूस के इस्तकबाल के लिए बेचैन थे, और आज शयातीन ने उनके दिलों में ये वसवसे डाल दिए हैं कि बस थोड़ा इंतज़ार करो, सरहदों कबाइल में अमरीका और दरियाए अटक तक भारत के परचम लहराने वाले हैं। इन मुनाफिकीन की देरीना ख्वाहिश है कि वाहगा की लकीर को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि भारत शराबो शबाब के लिए इन्हें दिल्ली और मुंबई न जाना पड़े। ये सिर्फ शैतानी वसवसा है जिसको शयातीन ने समझने में गलती की है। ये हकीकत है कि कौमियत के तागूत की बनाई सरहदी लकीरें मिटाने का वक्त आ गया है, और सिर्फ वाहगा ही क्या, कश्मीर की खूनी लकीर मिटाने का भी वक्त आ ही पहुंचा है। लेकिन इस तरह नहीं जैसा मुनाफिकीन समझ रहे हैं कि भारतीय फौज इसको खत्म करेगी। ये लकीर इन्हीं पैरों तले रौंदी जाएगी जहां से हमेशा रौंदी जाती रही है, और अखंड भारत के बजाय एक नया पाकिस्तान वजूद में आएगा जहां के बासी दुनिया में सर उठाकर जिएंगे। ना इसको भारतीय टेक्नोलॉजी रोक पाएगी और ना पाकिस्तान में मौजूद बरहमन के नमक खुआर। ये बातें इन तजिया निगारों के लिए अजीब होंगी जिन्होंने इस दौर के बारे में अहादीस का मुताला नहीं किया, और उनके इल्म की बुनियाद दज्जाली मीडिया की रिपोर्टों, खबरों और तबसिरों पर खड़ी हुई है। अगर इन हालात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में समझकर पॉलिसी नहीं बनाई गई तो दज्जाल के दजलों फरेब की भेंट चढ़ जाएंगे और उन्हें एहसास तक नहीं होगा। जो दानिश्वर सिर्फ जाहिरी हालात और मगरबी मीडिया की रिपोर्टें पढ़कर तजिये कर रहे हैं वो लकीर ही पीटते रह जाएंगे। ये बहुत बहुत खास वक्त है। हक व बातिल के माबैन जारी मार्का इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। हर मुसलमान अपने दिल के बारे में अच्छी तरह जानता है कि इसके दिल में किसी चीज की मोहब्बत सबसे ज्यादा है। हर एक को इस बात का इल्म है कि वो अपने ईमान को कितना अजीज रखता है और किस कीमत पर वो अपने ईमान की हिफाजत कर सकता है। हर मुसलमान अपने बारे में सोचे कि वो किसके लश्कर का हिस्सा बनना चाहता है। एक तरफ हक है और दूसरी तरफ बातिल। एक तरफ अमेरिका दज्जाल की सफ में खड़े होने की दावत दे रहा है और दूसरी जानब गुरबा की सरजमीन और जिहाद के मैदानों से सदाएं आ रही हैं। उल्मा अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे हालात में उन पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। जब आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये 1400 साल तारीख के नाजुक तरीन हालात हैं और ये खास मरहला है जिसमें उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो चुकी है, तो फिर आप खास फैसलों से क्यों घबरा रहे हैं? जब हालात खास हैं तो फैसले भी खास ही करने होंगे, तब जाकर आप खुद को और अपने कौम को इन हालात से निकाल कर ले जा सकते हैं। हर तबके में मौजूद पाकिस्तान का दर्द रखने वाले बाअसर हजरात, मसलन सहाफी, कॉलम निगार, सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसरान वगैरह को घर से निकलना होगा और हुकूमतों को मजबूर करना होगा कि गले में पड़े अमरीकी इत्तेहाद के पट्टे को अब उतार फेंकें, और ना ऐसा ना हो कि कयामत के दिन इसी पट्टे के साथ उठाया जाए। नीज पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर इमाम महदी का जहूर हो गया तो क्या ये हुकूमतें उस वक्त भी अमरीका के इसी इत्तेहाद में ही लड़ती रहेंगी? मुशर्रफ की मुसल्लत की हुई इस पॉलिसी से निजात में ही पाकिस्तान का मफाद है, इसी में आखरत की भलाई है। ये तमाम दज्जाली क़ुव्वतें पाकिस्तान के मुसलमानों की दुश्मन हैं और हर हाल में इनका वजूद मिटाना चाहती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मामूल के मामूलात पर कोई फर्क ना पड़े और आप सुरखरू भी हो जाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। खास हालात से निमटने के लिए खास फैसलों और खास इकदामात की जरूरत होती है, और ये अहम फैसले करने का वक्त है। अगर हुक्मरान पाकिस्तान को बेचने पर मुत्तफिक हो गए हैं तो क्या आप जीते जी बरहमन की गुलामी में जीना गवारा करेंगे? जहां तक पाकिस्तान में मौजूद बाज दर्दमंद लोगों का ताल्लुक है, वो अपनी समझ के मुताबिक इस साजिश के खिलाफ कोशिशें कर रहे हैं। बहुत कलील तादाद जो कि इदारों, सहाफियों और दूसरे शोबों में है, इस साजिश को समझ रही है। जबकि उनके मुकाबले में मौजूद पाकिस्तान दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के हर शोबे में काबिज हो चुके हैं। और इस वक्त कादियानी तक आला इदारों में विराजमान हैं। बड़े बड़े टीवी चैनल, मशहूर कॉलम निगार, इंसानी, यहूदो हनूद के हकूक की तंजीमें, कई सियासी जमातों की क्यादत के मुकाबले में इस तबके पाकिस्तान का दर्द रखने की वाले की आवाज अब धीरे धीरे सिसकियों में तब्दील होती जा रही है। मुंबई हमलों के वक्त उम्मीद हो चली थी कि फौज अपने असल दुश्मन की तरफ फिर से पलट जाएगी। पाकिस्तान का दर्द रखने वाले भी खुश थे, लेकिन लगता है कि दूसरा तबका इस मुल्क पर काबिज हो चुका और मुशर्रफ सब कुछ तबाह ही कर गया। इस वक्त में उलमाए हक को इन दर्दमंदाने पाकिस्तान से मिलकर अब वो बात कह देनी चाहिए जिसको वो अभी तक नहीं कह पाए। तमाम पाकिस्तानियों को बता देना चाहिए कि सूबह सरहद व कबाइल पाकिस्तान के दुश्मन नहीं, बल्कि ये आने वाले वक्त में ना सिर्फ पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, बल्कि तमाम बर्रे सगीर के मुसलमानों को हिंदुओं के जुल्म से निजात दिलाने वाले हैं। जब इनको मिटाने की कोशिश भारत और अमेरिका के कहने पर हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले और यहाँ की मसाजिद और मदारिस को सिखों का अस्तबल बनाने के लिए राह हमवार करने वाले खुद हुकूमत की सफों में मौजूद हों, पंजाब और सिंध के अहले ईमान को ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर इस वक्त गफलत बढ़ती गई तो अफसोस के लिए भी कुछ बाकी नहीं रहेगा। ऐ मुसलमानों, अगर आपको इस्लाम के लिए जान देना गवारा नहीं, अगर आपको अपने मुल्क से भी कोई मोहब्बत नहीं, तो खुदारा अपने घर और अपने प्यारे बच्चों की ही फिक्र कीजिए। अपनी जान, माल, कारोबार, खेती बाड़ी की ही फिक्र कीजिए। अगर सुस्ती कर बैठे तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ ये बात वाजह करता चलूं कि हमारी जो खुशफहमी है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे वजूद में आया, लिहाजा इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ऐसा ही होगा, लेकिन अगर ये सच है कि अल्लाह ने इस जमीन को किसी खास मकसद के लिए वजूद बख्शा है, तो अल्लाह इतनी अहम जमीन पर हम जैसे बुजदिलों, खुद गर्जों, ख्वाहिशात के गुलामों और खुश फहमों का वजूद कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान जरूर बाकी रहेगा, बल्कि इसकी हुदूद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैल जाएंगी, लेकिन यहाँ मौजूद वो लोग जो अजीम मकसद के लिए अपनी जान नहीं दे सकते, उनको मिटा दिया जाएगा और इस मुल्क को ऐसे हाथों में दे दिया जाएगा जिन्हें देखकर 1947 की शहदा की रूहें खुश हो उठेंगी। कम से कम मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ये बातें शायद गाफिलों को तखय्युल लगें या कुछ और, लेकिन दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी और भारतीय लॉबी जो साजिशें कर रही है, वो पाकिस्तान के मुसलमानों की तबाही का सामान है, और जो उनके खिलाफ नहीं उठता वो भी कयामत के दिन इसमें शरीक समझा जाएगा। एक बार फिर याद दिलाता चलूं, जहां तक इस्लामी कुव्वतों का ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला उनको हर दिन मजबूत ही करते चले जा रहे हैं। अमरीकी हो या भारतीय, या पाकिस्तान में मौजूद मुनाफिकीन, उनकी बदबूदार जबानें और मुसलमानों के खून से रंगीन कलम, ये सब मिलकर भी अल्लाह ताला के मंशा के मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकते। अगर अल्लाह ताला कौम अफगान को इमाम मेहदी के लश्कर के लिए मुंतखब कर चुके और इनके हाथों हिंदुस्तान के फतह करने का फैसला कर चुके, तो सारे काफिर और उनके भाई मुनाफिक मिलकर भी कौम अफगान को खत्म नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला को उनके फैसलों पर अमल दरामद से दुनिया वाले रोक नहीं सकते। राकिम की बातें जिनकी समझ में नहीं आती ना आए कि उनसे कोई गर्ज नहीं, लेकिन ये गुनहगार जिन उलमाए हक को याद दहानी कराना चाहता है, वो इस इन बातों का जरूर इल्म रखते हैं कि अल्लाह ने बर्रे सगीर کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت آپ ہی کے ذریعے کرائی ہے، اور آپ کے اسلاف نے اپنے سروں کی فصلیں کٹوا کر اس خطے میں مسلمانوں کی بالادستی کی حفاظت کی ہے۔ راقم کا اس موضوع پر لکھنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو موجود خطرات سے آگاہ کر کے انہیں حق کے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے۔ برمودا تکون یا شیطانی سمندر میں دجال ہو یا نہ ہو، دجال جلد نکلے یا بدیر، لیکن اس سے پہلے کے فتنوں سے بچنا اور اس کے لیے تدابیر اختیار کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے جو فتنے ظاہر ہوں گے انہی میں حق و باطل الگ الگ ہو جائیں گے۔ جو کہ آنے سے پہلے حق کے لشکر میں شامل ہو گیا، دجال اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حق کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دجال اور اس کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ پہلا باب، شیطانی سمندر، برمودا تکون اور اڑنتشتریاں۔ شیطانی سمندر، برمودا تکون اور اڑنتشتریاں ایسے موضوع ہیں جو آپ مختلف انداز میں سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہوں گے۔ افسانوی قصے، خوفناک داستانیں، ناقابل یقین واقعات، تاریخی شہادتیں، ان سب کو اس طرح گڈ مڈ کر دیا گیا ہے کہ پڑھنے والا کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا، بلکہ غیر شعوری طور پر اس کے لاشعور میں یہ ایک ایسی داستان کی شکل اختیار کر جاتا ہے جس میں کچھ تجسس، کچھ خوف، کچھ نئے حقائق، کچھ افسانوی قصے شامل ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے اور ایک مسلمان کو اس مسئلے کو کس روشنی میں دیکھنا چاہیے؟ نیز جو کچھ دنیا کے سامنے اس علاقے کے بارے میں بتایا جاتا رہا ہے، کیا یہ سب افسانہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو پھر اس پانی کے اندر ایسا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نگل گیا، سینکڑوں جہاز غائب ہو گئے، کسی کا کچھ پتہ نہ چلا؟ کیا ابلیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا کانا دجال اس علاقے میں موجود ہے؟ بڑے بڑے دیو ہیکل جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک غائب ہو جانا، کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اغوا کیا جانا، کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا اغوا کر لیا جانا، فضا میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہو جانا، یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کی تشریح آج تک دل کو مطمئن نہیں کر سکی۔ ان کا غائب ہونا اس قدر تیز ہوتا کہ طیاروں کے پائلٹ یا جہاز کے کپتان کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی مہلت بھی نہیں مل پاتی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غائب ہونے والے طیاروں، جہازوں اور مسافروں کا کبھی کوئی نام و نشان بھی نہیں مل سکا۔ اگرچہ بعض ماہرین کی طرف سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ اس جگہ سمندر کے اندر ایسے تیز طوفان آتے ہیں جن کی شدت سے یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہوائیں ان کو دور دراز کے پانیوں میں بہا لے جاتی ہیں، لیکن اس تشریح کو انسانی ذہن اس لیے تسلیم نہیں کر سکتا کہ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں، جبکہ ماہرین سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کر مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں پر تحقیق کے لیے ان کے جسموں کے ساتھ کیمرے لگا کر ان کی تمام نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں، تو کیا آج تک وہ برمودا تکون میں غائب ہونے والے بڑے بڑے جہازوں کا ملبہ بھی کہیں نہیں ڈھونڈ سکے؟ نیز اس علاقے میں رونما ہونے والے تمام حادثات میں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ اغوا ہونے والے طیاروں کے پائلٹ اور جہاز کے کپتان یا مسافروں میں अपने वक्त के माहिर लोग अगवा किए गए हैं। नेज जितने भी हादसात हुए उस वक्त वहां मौसम बिल्कुल मोतदिल और दिन का वक्त था, चुनाचा मौसम की खराबी को भी इसमें कोई दखल नहीं है। तैयारों और जहाजों से उनके हेडक्वार्टर का रास्ता अचानक मुनक़ता हो गया, गोया रेडियो सिग्नल किसी ने जाम कर दिए हों। अगर अक्सर मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं, शैतानी समंदर और बरमूदा तिकोन में ऐसी पुरिसरार कशिश है जो हमारी इस कशिश से मुख्तलिफ है जिसको हम जानते हैं। बरमूदा तिकोन और शैतानी समंदर लोगों के लिए एक पुरिसरार इलाका बन चुका है जिसके बारे में जानने के लिए इंसानी तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा है। बास मुस्लिम मुहक्किकीन का ख्याल है कि शैतानी समंदर और बरमूदा तिकोन के अंदर दज्जाल ने खुफिया पनाह गाहें बनाई हुई हैं, जहां से वो दुनिया के निजाम को कंट्रोल कर रहा है। इस बारे में भी हम तफसील से रोशनी डालेंगे। बरमूदा तिकोन से पहले शैतानी समंदर के बारे में कुछ जानते चलें। पहला हिस्सा, ड्रैगन तिकोन या शैतानी समंदर, डेविल सी। बरमूदा तिकोन के बारे में तो तमाम दुनिया भर में कुछ बहुत कुछ लिखा जाता रहा है और इसके बारे में लोगों को खासी मालूमात हैं, लेकिन बरमूदा तिकोन की तरह पुरेसरार और हादसात के मरकज जापान का ड्रैगन तिकोन या शैतानी समंदर के बारे में लोगों को बहुत कम मालूम है। जापान के लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह इल्म है और जापानी हुकूमत ने सरकारी ऐलान के जरिए लोगों को इस इलाके से दूर रहने का हुक्म जारी कर रखा है, लेकिन जापान से बाहर की दुनिया इसके बारे में कम ही जानती है। हालांकि बरमूदा तिकोन की तरह यहाँ भी जहाजों, आबदोजों और तैयारों के गायब होने की वाकयात में तेजी से इजाफा होता जा रहा है, बल्कि मुहक्किकीन का ख्याल है यही हादसात की तादाद बरमूदा तिकोन से ज्यादा है। यहाँ भी अगवा होने वालों की अक्सरियत माहिरीन, कप्तानों और हवाबाजों की रही है, बल्कि एक बात जो यहाँ ज्यादा खतरनाक नजर आती है वो ये है कि यहाँ गायब होने वाले जहाज और आबदोजों में ऐसे जहाज और आबदोजे भी शामिल हैं जिनमें खतरनाक एटमी मवाद भरा हुआ था। शैतानी समंदर का महल वकूफ। ये इलाका बहरुल काहिल, पैसिफिक ओशियन में जापान और फिलिपाइन के इलाके में है। ये तिकोन जापान के साहिली शहर योकोहामा से फिलिपाइन के जजीरे गुआम तक और गुआम से फिर जापान के मारियाना जजायर तक और फिर मारियाना से योकोहामा तक बनती है। मारियाना जजायर पर दूसरी जंगे अजीम में अमेरिका ने कब्जा कर लिया था। इस समंदर को जापानी लोग मानवामी कहते हैं, जिसके माना शैतान का समंदर है। बरमूदा तिकोन और शैतानी समंदर पर तहकीक करने वालों में एक बड़ा मशहूर नाम चार्ल्स बर्ड्स का है। वो अपनी किताब द ड्रैगन ट्रायंगल में लिखते हैं, 1952 ता 1954 जापान ने अपने पांच बड़े फौजी जहाज इस इलाके में खोए हैं जहां अफराद की तादाद 700 से ऊपर है। इस मामले का राज जानने के लिए जापानी हुकूमत ने एक जहाज पर 100 से ज्यादा साइंसदानों को सवार किया, लेकिन शैतानी समंदर का मुआम्मा हल करने वाले खुद मुआम्मा बन गए। इसके बाद जापान ने इस इलाके को खतरनाक करार दे दिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान बहरी लड़ाई में जापान को अपने पांच तैयारा बरदार जहाजों से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा 340 तैयारे, 10 जंगी जहाज, 10 जंगी कश्तियां, 9 स्पीड बोट्स और 400 खुद कुछ तैयारे भी इस तिकोन के इलाके में तबाह हुए। जंग के दौरान इस नुकसान के बारे में आप कह सकते हैं कि ये सब दुश्मन इत्तेहादियों की जानिब से किया गया होगा। लेकिन इस बहरी दस्ते के बारे में क्या तशरीह की जाएगी जो इस इलाके में बगैर किसी हादसे के गायब हो गया, हालांकि अभी तक वहां ना तो अमरीकी और ना ही बरतानवी जहाज पहुंचे थे। कम अज कम माहरीन की यही राय है कि ये तबाही खुले दुश्मनों की जानिब से नहीं की थी, क्योंकि एक मुहक्किक के बकौल ये बात इंतहाई मशकूक है कि इन जहाजों को दुश्मन ने डुबोया हो, क्योंकि ये जहाज अपनी समंदरी हदूद में थे और जंग की इब्तदा में वहां बरतानवी या अमरीकी जहाज नहीं पहुंचे थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस इलाके में कोई और छुपी हुई क़ुव्वत भी मौजूद है जो इस जंग में अमरीका और उसके इत्तेहादियों को कामयाब देखना चाहती थी? बरमूदा तिकोन और शैतानी समंदर में इतनी ज्यादा मुमासलत जानने के बाद क्या कोई ये मान सकता है कि ये महज इत्तफाक है? हरगिज नहीं। मशहूर मुहक्किक चार्ल्स बर्ज कहते हैं, बरमूदा और शैतानी समंदर में पुरेसरार तौर पर गायब हो जाना इत्तफाकी नहीं हो सकता, जबकि दोनों इलाकों में बिल्कुल मुमासलत पाई जाती रही है। जहाजों और तैयारों के गायब होने में दोनों जगह का एक ही नजरिया कार फरमा है। द ड्रैगन ट्रायंगल, जहाज, मंजिल नामालूम। यहाँ होने वाले चंद मशहूर हादसात के बारे में जानते चलें ताकि गायब होने वालों की तफसील मालूम हो जाए। नंबर एक, जापानी पेट्रोल बर्दार जहाज कायो मारो 5। ये एक बड़ा पेट्रोल बर्दार जहाज था जिसका अमला 31 अफराद पर मुश्तमिल था, जबकि इस पर 500 टन पेट्रोल लदा हुआ था। इनमें 9 साइंसदान भी थे। इस जहाज का अपने मरकज से आखिरी राबता 24 सितंबर 1952 को हुआ था। इसके बाद इसका कुछ पता नहीं चल सका कि कहाँ गया। नंबर दो, जापानी माल बरदार जहाज कोरो शेयो मारो 2। ये भी बड़ा माल बरदार जहाज था जिस पर 552 टन माल लदा हुआ था। इसको भी इसके अमले समेत समंदर निगल गया और कोई सुराग नहीं मिल सका। इसका आखिरी राबता 22 अप्रैल 1949 को हुआ था। नंबर तीन, फ्रांसीसी जहाज जेरा नियोम। इस जहाज ने 24 नवंबर 1947 को पैगाम भेजा कि मौसम खुशगवार है। उसके बाद ये जहाज अपने 29 अफराद पर मुश्तमिल अमले के साथ हमेशा के लिए कहीं गुमनाम खिदमत पर चला गया। नंबर चार, माल बरदार जहाज बानालोना। ये लाइबेरिया का जहाज था जिस पर 13,616 टन वजन था और अमले की तादाद 35 थी। नवंबर 1971 में शैतानी समंदर की भेंट चढ़ गया। नंबर पांच, माल बरदार जहाज मास्जोसार। ये जहाज भी लाइबेरिया का था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये जहाज शैतानी समंदर में था कि अचानक आग भड़क उठी, लेकिन ये आग जहाज के अंदर से नहीं बल्कि पानी से जहाज की तरफ बढ़ी थी। बहुत से लोगों ने उसी वक्त इसकी तस्वीरें निकाल ली जिसमें साफ नजर आ रहा है कि जहाज के चारों तरफ पानी की लहरों में आग है। हैरत की बात यह है कि इस जहाज में कोई काबिले इश्ताल मादा नहीं था। इससे भी हैरत की बात यह है कि जहाज को घेरने वाली आग मुसल्लस की शक्ल में थी। इसमें 24 अफराद सवार थे। ये वाकया मार्च 1987 में पेश आया। नंबर छः, माल बरदार जहाज सोफिया बाबास। ये जहाज टोक्यो, जापान जापान की बंदरगाह से रवाना हुआ और थोड़ा चलने के बाद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, लेकिन गायब नहीं हुआ। समंदरों के सीने चीरने वाली और मिर्रीख पर कमंडे डालने वाली टेक्नोलॉजी इसका सबब जानने से कासिर रही। सबब नामालूम, तफ्तीश के दरवाजे बंद, गौर कीजिए। नंबर 7, यूनानी जहाज अजियोस जियोर्जेस। ये बड़ा तिजारती जहाज था जो 29 अफराद पर मुश्तमिल अमले के साथ अगवा कर लिया गया। इस पर 16,565 टन वजन लदा हुआ था। ना जहाज का पता चला, ना अफराद का, और ना ही इस लदे हुए माल का असर पानी पर नजर आया। एटमी आबदोजों का अगवा, कजाक या साइंसदान। जहाज के गायब हो जाने के बारे में तो ये बहाना पेश किया जा सकता है कि जहाज डूब गया, लेकिन जदीद आबदोजें जिनमें जदीद वायरलेस निज़ाम मौजूद हो, अगर वो इस इलाके में गायब कर दी जाएं, तो आप क्या कहेंगे? फिर आबदोजें भी कोई आम नहीं बल्कि एटमी आबदोजें। जरा सोचिए और ताज्जुब कीजिए, किस सुपर पावर की एटमी आबदोज के बगैर किसी सबक के गायब हो जाए और उसकी तरफ से कोई खातिर ख्वाह परेशानी या इस्तराब देखने में ना आए। गोया जिसने दी थी उसी ने वापस ले ली। नंबर 1, रूसी आबदोज विक्टर 1। ये जदीद एटमी आबदोज थी। मार्च 1984 में शैतानी समंदर की खुफिया कुवत के पास मय अमले के चली गई। अमले की तादाद मालूम नहीं हो सकी, शायद कोई बहुत खास लोग इसमें सवार थे। नंबर 2, रूसी आबदोज इको 1। पहली आबदोज के गायब हो जाने के सिर्फ 5 महीने बाद सितंबर में जापान के साहिल से 60 मील दूर ये भी शैतानी समंदर की खुफिया कुवत ने किसी जरूरी काम से अपने पास मंगवा ली। जरा मुलाहिजा फरमाइए, एटमी आबदोज ना हुई कोई खिलौना थी कि कुछ परवाह ही नहीं। नंबर 3, रूसी आबदोज इको 2। जनवरी 1986 को ये भी इस इलाके की नजर हो गई। ये भी एटमी आबदोज थी। नंबर 4, रूसी आबदोज जोल्फ 1। अप्रैल 1966 में ये आबदोज गायब हुई। इसके अमले की तादाद 82 थी और इस पे 800 किलोग्राम एटमी वॉरहेड लदे हुए थे। अफराद और एटमी वॉरहेड बगैर किसी सबब के पानी की गहराइयों में चले गए। नंबर 5, फ्रांसीसी आबदोज चार्ली। ये एटमी आबदोज थी। सितंबर 1984 में इस इलाके में अपने 90 सवारों समेत गायब हो गई। नंबर 6, बरतानवी आबदोज फॉक्स क्रॉल। नवंबर 1986 में अपने अमले समेत गायब हुई। शैतानी समंदर के ऊपर अगवा किए जाने वाले तैयारे। मार्च 1957 में 10 दिन के अंदर अमेरिका के 3 जंगी तैयारे अपने तमाम अमले समेत इस तरह गायब हुए कि कोई नाम निशान नहीं मिल सका। ना ही किसी हादसे या फनी खराबी का पैगाम पायलट की जानिब से महसूस हुआ, या ये तैयारे JD-1, KB-50 और C-97 थे। इसके अलावा जापान का जंगी तैयारा P-2J 16 जुलाई 1971 को गायब हुआ। ये भी कोई हंगामी पैगाम नहीं दे सका। 27 अप्रैल 1971 को जापान का ही एक और जंगी तैयारा P-2V-7 गायब हुआ। इसके 2 महीने बाद जापान का तदरीबी तैयारा IM-1 गायब हुआ। JA-341 मुसाफिर बर्दार तैयारा, मैं सहाफियों की टीम के इस इलाके के ऊपर से गुजर रहा था। ये सहाफी अमरीकी माल बर्दार जहाज कैलिफोर्निया मारो, जो कि पहले यहाँ गायब हो चुका था, कि तहकीक के सिलसिले में वहां जा रहे थे। ये सहाफी गायबशुदा जहाज की तहकीक तो ना कर सके, अलबत्ता दुनिया को अपनी तहकीक में जरूर लगा गए। ऐसा गायब हुए कि ना तैयारे का सुराग मिला ना सहाफियों की टीम का। 19 मार्च 1957 को साबिक फिलिपाइनी सदर का तैयारा 24 हुकूमती अहलकारों समेत शैतानी समंदर की फजा में गायब हुआ और कोई सुराग न मिल सका। दूसरा हिस्सा, बरमूडा तिकोन, बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा तिकोन का महल वकूफ। बरमूडा बहरे ओकयानूस अटलांटिक ओशियन के कुल 300 जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनमें अक्सर गैर आबाद हैं। सिर्फ 20 जजीरों पर इंसान आबाद हैं, वो भी बहुत कम तादाद में। जो इलाका खतरनाक समझा जाता है, इसको बरमूडा तिकोन कहते हैं। इस तिकोन का कुल रकबा 1,14,000 मुरब्बा मील किलोमीटर है। इसका शुमाली सिरा जजायर बरमूडा और जनूब मशरिकी सिरा पोर्टोरिको और जनूब मगरबी सिरा मियामी फ्लोरिडा अमरीकी मशहूरी रियासत है। यानी इसका तिकोन मियामी फ्लोरिडा में बनता है। जी हाँ, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के माने इस खुदा का शहर जिसका इंतजार किया जा रहा है। इसके दूसरे माने वो खुदा जिसका इंतजार किया जा रहा है। तकरीबन 400 साल से किसी इंसान ने इन वीरान जजीरों में जाकर आबाद होने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक के जहाज के कैप्टन तक इस इलाके से दूर ही रहते हैं। इनमें एक जुमला बड़ा आम है, जो वो एक दूसरे को नसीहत भी करते हैं। वहां पानी की गहराइयों में खौफ और शैतानी राज छुपे हैं। यहाँ तक कि इस रास्ते पर सफर करने वाले मुसाफिर, बल्कि एयर होस्टेस तक, सबसे पहले यही सवाल करती हैं कि क्या हमारा तैयारा बरमूडा तिकोन के ऊपर से गुजर कर जाएगा। कंपनी का जवाब अगरचा नफी में ही होता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। क्या बरमूडा तिकोन वाकई तिकोन की शक्ल में है? बरमूडा तिकोन सारा का सारा पानी में है, जो कि बहरे ओकयानूस अटलांटिक ओशियन में है। चुनाचा काबिले गौर बात यह है कि ठाटे मारते समंदर में तिकोन किस तरह बन सकता है। तो जानना चाहिए कि तिकोन हकीकी नहीं है, बल्कि ये एक मखसूस इलाका है जहां नाकाबले यकीन हादसात होते हैं। इस इलाके को तिकोन का फर्जी नाम दे दिया गया है। इस नाम के बारे में मशहूर ये है कि पहली बार इस इलाके के लिए बरमूडा तिकोन का नाम 1945 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त इस्तेमाल किया गया, जब इस इलाके में कुछ तैयारे गायब हो गए। ये बात काबिले तवज्जा है कि इसको तिकोन का नाम ही क्यों दिया गया। इस हादसे से पहले भी यहाँ बहुत से हादसात रोनुमा हो चुके थे, इसलिए इस वक्त इस इलाके को बरमूडा तिकोन के बजाय शैतान के जजीरे कहा जाने लगा। क्रिस्टोफर कोलंबस 1451-1506 जब इस इलाके से गुजरा, तो उसने भी यहाँ कुछ अजीबो गरीब मुशाहिदात किए। मसलन, आग के गोलों का समंदर के अंदर दाखिल होना, इस इलाके में पहुंचकर कंपास कुतुबनुमा में बगैर किसी जाहिरी सबब के खराबी पैदा हो जाना। कोलंबस के अमरीकी सफर को अब 5 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन ये सवाल आज भी इसी तरह बरकरार है कि इस इलाके में पानी की गहराइयों में, पानी के ऊपर और उसकी फजाओं में ऐसी क्या चीज है? कौन सी पुरेसरार ताकत है कि जिसकी तशरीह अक्ल इंसानी सैटेलाइट के इस जदीद दौर में भी नहीं कर सकी? 1854 से पहले अरब लोग इस इलाके से गुजरते थे, लेकिन उनके जहाजों को कभी कोई हादसा या कोई गैर मामूली बात यहाँ देखने में नहीं आई। अलबत्ता तारीख में बाज वाकयात 1854 से पहले के भी मिलते हैं। पार्ट 1 यहाँ इख्तिताम पजीर होता है।